سمعتك هوجا उसके बाद व्यास पूजा
वक्ता का अनुमोदन नहीं कथा का अनुमोदन
कथा का अनुमोदन होगा उसके बाद मान समार होगा उसके बाद फिर आरती एवं कीर्तन की कार्यक्रम है तो कृपया साथ दे दीजिए आज थोड़ी देर 15-20 मिनट थोड़ा सा जैसे 9 बजे तक जो खत्म हो जाता है तो आज 10-15 मिनट थोड़ा सा आगे होगा कृपया आप शांति बना के रखें मैं सर्वप्रथम अनुमोदन जो ये कार्यक्रम है इसके लिए मैं श्रीमान राधा कृष्ण को यहाँ बुलाता हूँ कृपया आइए दो शब्द में अनुमोदन करें
वहां बैठ कर बैठ कर ठीक है बीच में बढ़ जाए अच्छा उधर से आने में
हरे कृष्ण सभी कृपया बैठे रहे
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनामिने नमस्ते प्रभुपादीय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे परम आराध्य श्री श्री राधा गोविंद देव जी महाराज श्री के चरण कमलों में एवं समुपस्थित सभी वैष्णव माताओं के चरणों में सादर दंडवत करते हुए यहां श्रीमद् भागवत सप्ताह नोएडा में आने का प्रथम सुअवसर लाभ प्राप्त हुआ है। महाराज श्री की कृपा से बहुत ही सुंदर सुयोग्य उपस्थित हुआ आने का और सुनने का अनिर्वचनीय सुख प्राप्त हुआ। भगवान की लीला कथा तो आनंदमय है ही जैसा कि आप श्रवण कर रहे थे यह एक रस है और यह अद्भुत रस है। लोक में कितना भी सुंदर रस का यदि पान किया जाए तो उससे तृप्ति हो जाती है कुछ समय कुछ मात्रा के बाद परंतु यह तो इतना अद्भुत दिव्य रस है कि व्यक्ति जितना ही इसका पान करे उसकी तृषा उसकी प्यास अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। तो ऐसी ही स्थिति है बड़ी विषम स्थिति में अनुमोदन का कार्यक्रम रखा गया है। मोद का अर्थ होता है आनंद। तो वास्तव में कथा में श्रवण करने में जो आनंद मिल रहा था वह आनंद अपने चरम सीमा पर है। तो फिर भी जो विगत कथा में आनंद हुआ है वह बड़ा ही सुंदर अनुभव अनिर्वचनीय है। वाणी के द्वारा उस आनंद का वर्णन करना संभव नहीं है। और यही वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, यही सबसे बड़ा जीवन का आनंद है। महाराज जी भी सुना रहे थे कि श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है, शास्त्र साक्षात भगवान ही श्रीमद् भागवत है, भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। और इसके जो प्रथम श्रोता है परीक्षित महाराज, महाराज श्री बता रहे थे कि भागवत श्रवण करने से क्या, बहुत लोगों का प्रश्न होता है सुनने से क्या होता है, कुछ करना चाहिए। परंतु परीक्षित महाराज भगवान को अपने मां के गर्भ में ही प्राप्त कर चुके थे, दर्शन कर चुके थे, ऐसे परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत के प्रथम श्रोता है। भागवत के बाद भगवत प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है, जिसे गर्भ में ही भगवत प्राप्ति हो चुकी थी वह जीवन के अंतिम समय में इस भागवत रस का आस्वादन किया है। और यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, धर्म सुअनुष्ठितः पुंसाम्। यदि वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार आपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ठीक ठीक आपने पूरा पूरा वेद विधि से धर्मों का सुअनुष्ठान किया है, सुंदर विधि से आपने अनुष्ठान किया है, परंतु जीवन का जितना भी धर्म है, दान है, कर्म है, तीर्थाटन है, व्रत है, उपवास है, जप है, तप है, इन सारे सुकर्म और धर्म आपको फलीभूत हुआ कि नहीं, इसका लक्षण यही है। कहते हैं कि यदि भगवान उत्तम श्लोक की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई, नोत्पाद येद यदि रतिम श्रम एव ही केवल, यदि ये सारे धर्म और कर्म भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं करते हैं, तो ये सारे किए हुए धार्मिक अनुष्ठान केवल परिश्रम मात्र है, यूजलेस लेबर है, ये गधे के समान परिश्रम। जैसे गधा चाहे बासमती का चावल या रेशम का कपड़ा ढोए परंतु उसके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसे ही वह धर्म भी इतना निकृष्ट हो जाता है यदि भगवत कथा श्रवण करने में रति उत्पन्न। हम लोगों का सौभाग्य है, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि किस तरह से भगवान उरुक्रम ने, त्रिविक्रम ने अपने भक्त पर कृपा की, असुर कुल में उत्पन्न हुए थे बलि महाराज। तो देखने में ऐसा लगता है कि भगवान ने बलि को बांध दिया, परंतु सत्य यह है कि भगवान बांधे कम समय के लिए और बंध गए अनंत समय के लिए। बहुत कम समय के लिए बांधा उन्होंने, परंतु लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए, आजीवन के लिए बलि महाराज के सामने बंध गए भगवान। बांधा नहीं बलि ने, इन्होंने इनको तो बांधना पड़ा, परंतु भगवान बलि महाराज के प्रेम से स्वयं भगवान ने कहा कि मैं बंध कर रहूंगा तुम्हारे सामने। अब सत्य है कि असत्य, हमने सुना है कि बलि महाराज के उस लोक में 52 दरवाजा था और 52 दरवाजा पर जिधर भी बलि महाराज देखते हैं वहां पर पहरेदार के दुर्गपाल के रूप में 52 भगवान दर्शन देते रहते हैं प्रत्येक समय, जो भी सत्य हो अलग बात है। तो इस तरह से आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं। कथा में मुझे सबसे सुंदर बात अनुमोदन का अर्थ होता है कथा में जो मोद प्राप्त हुआ है उसको बताना। मुझे जो सबसे, मेरे हृदय को जो स्पर्श किया है वो ये था कि भगवान भी अनुमोदन करते हैं बलि महाराज का कि तुम्हारे सामने कितनी विषम विषम विकट परिस्थिति आई, गुरु ने तुम्हें श्राप दिया, स्थान से भ्रष्ट कर दिया और पद से च्युत हो गया, तुम्हारी सब कुछ हर ली गई, ऊपर से मैंने भला बुरा भी सुनाया, लेकिन अविकलौ चित से, बिल्कुल बलि महाराज घबराए नहीं। इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा के बाद भी बलि महाराज का जो उत्साह था देने का, भगवान के लिए देना चाहते थे, और इसका मूल कारण था कि उन्होंने अपना आदर्श बनाया था परम भागवत अपने पितामह श्री प्रहलाद महाराज को। जीवन में इसी तरह से अपना आदर्श जो है उच्च व्यक्ति को, अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों को बनाए, और उनसे यदि आदर्श लेकर के शिक्षा ग्रहण करें तो हमारा भी जीवन स्तर, भक्ति का स्तर, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ सकता है। और किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति हो, दुर्दिन हो, सारे शरीर रोग से ग्रस्त हो, सारे स्वजन मर गए हो, सारा एक्सीडेंट हो गया हो, धन चला गया हो, सब गाली दे रहे हो, ऐसी स्थिति में भी हमारा चित्त बलि महाराज की तरह भगवान के चरणों से टस से मस न हो, यह सबसे बात, यह जो बात है मेरे हृदय को स्पर्श किया। महाराज श्री ऐसी कृपा करें कि हम लोगों के हृदय में भी ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं, अनुकूल प्रतिकूल, तो हम लोगों का हृदय भी विचलित न हो, ऐसी कृपा की याचना करते हैं। और साथ ही साथ प्रातःकालीन सत्संग सत्र में यद्यपि मेरा नाम आया था, मैं उपस्थित नहीं हो सका, तो समवेत रूप से आप सभी वैष्णवों के चरणों में क्षमा प्रार्थना करता हूं। और यहाँ के जितने भी भक्त हैं, बड़ी स्नेह के साथ, आत्मीयता के साथ, भक्तों के साथ जो संबंध स्थापित किया है, उसके लिए हम सभी, हम कृतज्ञ हैं उन वैष्णवों के, ब्रज भक्ति विलास प्रभु। वास्तव में महाराज जी ने अमृत प्रदान किया है, सुबह सुबह चैतन्य चरितामृत हो रहा था, समय थोड़ा ले रहा हूं क्योंकि क्षमा कीजिएगा। चैतन्य चरितामृत प्राप्त हुआ, वास्तव में महाराज जी तो श्रीमद् भागवत रस है, उस और उस रस का वितरण करने वाले महाराज जी के श्रीमुख से जब आता है तो वह रस दिव्य रस बन करके हम लोगों के कान को, हृदय को और मन को प्रभावित करता है। परंतु जैसे गाय में दूध है, लेकिन उस दूध को निकालने के लिए जब तक कोई बछड़ा न हो तब तक वह गाय दूध नहीं देती है, उसी तरह से इस मंदिर के भक्तों ने, ब्रज भक्ति विलास प्रभु ने और भी अन्यान्य जितने भी भक्त हैं, सब लोगों ने बछड़ा का काम किया है। और महाराज श्री के हृदय से जो दूध, मुखार बिंद से जो अमृत की वर्षा हुई है, और उन लोगों के सहयोग से हम लोगों को जो यह अमृत पान करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम आजीवन कृतज्ञ हैं। और ऐसी कामना करते हैं कि इस तरह से बार बार अमृत पाने का सुदुर्लभ सौयोग्य प्रदान करते रहें। इसी याचना के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए विराम करता हूं। हरे कृष्ण।
मैं श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु को यहाँ कृपया, कुंडल कृष्ण प्रभु मंच पर आए। कुंडल कृष्ण प्रभु मुंबई और गुजरात में प्रचार करते हैं, यहाँ कथा सुनने के लिए वहां से आए हुए हैं, उनका हम स्वागत है। कुंडल कृष्ण प्रभु की बात में ब्रजेंद्र कुमार प्रभु को से ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, तो महाराज बता रहे थे महाराज जी का जो जिस स्थान है उस स्थान से वो भी बिलोंग करते हैं, बचपन से ही श्रीमद् भागवत को सुनते आ रहा है इस काम से उनके अंदर कृष्ण लीला के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति इतिहास।
हरे कृष्ण। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अति प्रसन्नता हृदय में अनुभव कर रहे हैं वैष्णव के संग में। हमारा भी सौभाग्य यह है कि बचपन से ही राधा कृष्ण प्रभु की कृपा से हम महाराज जी के संग में है और उनकी कथा का आस्वादन करते हैं, और इस दिव्य अमृत वामन बलि महाराज का आत्मनिवेदन प्रसंग सुनने का सुअवसर हमारे जीवन में आया, इसके लिए हम ठाकुर जी के अति ऋणी हैं। महारानी कुंती की प्रार्थना के अनुसार नोएडा मंदिर के भक्त एवं महाराज जी ने हमको ये अनुमोदन करने का अवसर दिया, भगवान के चरणों में निकटता प्राप्त करने का सुलभ है ये। वास्तव में मैं जब आ रहा था बंबई से, दयालु वैष्णव की कृपा से ये ज्ञात हुआ कि महाराज जी कथा करने जा रहे हैं, तो मन में जिज्ञासा हुई कि कौन प्रसंग होगा। तो महाराज जी से बात करने में हिचक हो रही थी, तो मैं गौर कृष्ण प्रभु से कहा कि कौन प्रसंग है। बोले बलि वामन। तो बॉम्बे में भी इसके आगे के प्रकरण किए हुए हैं मीरा रोड में ही, और जुनकी की उत्सुकता थी। तो हमारे कई स्वजन हमसे एक प्रश्न करते हैं कि आप तो भागवत जानते हैं और कई बार सुने, तब क्यों जाते हैं? तो हम कहा कि जानते हैं इसीलिए तो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में वही जानता है जो कथा में जाता है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित, या तो उसके भी गुरु ब्रह्मा जी, या तो नारद जी, भगवान शिव, जितने भी महान व्यक्ति हुए उन्होंने यही किया है, केवल भागवत श्रवण। तो किसी भी महान व्यक्ति की सबसे बड़ी महानता यह है कि वो अपने आप को कृष्ण कथा से सम्मिलित रखे, और महाराज जी इसमें विभूति है। तो बहुत ही दिव्य प्रसंग रहा। वास्तव में कृष्ण कथा, कृष्ण का स्वरूप ही रसमय है, श्रुति रसो वै स कहती है उसको, और आचार्य लोग अखिल रसामृत मूर्ति। तो इनसे अभिन्न होने के कारण कृष्ण कथा अपने आप में स्वाभाविक रसमय है, और ऐसी दिव्य कथा जब महाराज जी जैसे रसिक महात्मा के मुख से निकलती है तो अति सुरसमय हो जाती है। और ऐसी कृष्ण कथा अमृत का कोई पान करता है तो कितना हो कठोर या नीरस हृदय हो वो भी रसमय हो जाता है स्वाभाविक। तो बहुत ही इस कथा प्रसंग में अब 7-8 मिनट में 7-8 दिनों की कथा का सार क्या कहा जाए, बड़ी दुविधा है, मुश्किल हो पड़ता है, और कौन प्रसंग को टच करे और किससे। सभी दिव्य प्रसंग, पूरा प्रसंग रहा स्वाभाविक, और बलि महाराज का जो आत्मनिवेदनम, वास्तव में जो जयदेव गोस्वामी ने गाया है, छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामन पदनख नीर जनित जन पावन, उसका जो रियल अर्थ है वो इस कथा में हमारे दिमाग मन में हृदय में क्लियर हो गया कि वास्तव में क्या है उसका पद का अर्थ, क्योंकि लीला कथा से ही किसी पद को ठीक से जाना जा सकता है। ऐसे भी सभी प्रसंग कहा नहीं जा सका, लेकिन रति भेद भाव भेद, भाव भेद रस भेद भक्तों में स्वाभाविक है। प्रथम दिन से अंतिम दिन तक रस ही रस महाराज जी के श्रीमुख से बरसता रहा। प्रथम दिन की भी अभी याद ताजा हो रही है, श्यामा वदा तो जसराज कुंडलो श्री वदनाम भुजम पुमान श्रीवत्स वक्षा। भगवान के अति परिमेय अति सुंदरता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से प्रकट हुआ। भगवान के लीला अवतार और भगवान की सुंदरता का सुंदर प्रकरण आया, और श्री श्री तीन बार से आया महाराज, श्री वनमालया हरे गृहित देह निज योग माया। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अपने ही योग माया से देह ग्रहण किए। तो इन प्रसंग को महाराज जी ने विशेष रूप से बहुत सुंदर ढंग से समझाया, अभी भी दिमाग में उभर रहा है। और महाराज जी की विशेषता यह है कि कोई भी प्रसंग कहते हैं तो स्वाभाविक ये जो प्रसंग कहते हैं तो हम लोगों की तरह तैयार और कुछ ये स्वाभाविक जैसे समुद्र में पूर्णिमा के दिन भर्ती होती रहते उसी तरह महाराज जी के हृदय में भागवत कथा उभरती रहती है स्वाभाविक। और जिस तरह चंद्रमा में चांदनी दूध में धवलता दिखाई पड़ती है उसी प्रकार आप लोग देख रहे होंगे, हम क्या बताएं, महाराज जी का जो आर्जवम सरलता उनकी पवित्रता उनका दयालुत्व सहज प्रकट हो रहा था और भाव में आकर कथा कहते हैं तो वही कथा वो सुने हुए भी हमको नया नया रसास्वादन होता है। तो अन्य प्रसंग में भी महाराज जी एक विशेष बात पर वहां पर भी जोर दिए थे जो हमारे मन में स्मरण आ रहा है मोदी को प्राप्त कराने वाला। भगवान अपनी योग माया से गृह देह को धारण करते सच्चिदानंद वपु है और जीव जो है प्रकृति के संसर्ग में प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर पंच तत्व से देह ग्रहण करता है और उसी देह में अहंता और ममता वश भगवान के साथ अपने रियल संबंध को भूलकर भौतिक संसार के चक्कर काटता रहता है। तो जैसे बलि महाराज का अहंतास्पद और ममतास्पद को भगवान वामन देव ने छीन लिया प्रहलाद महाराज और अन्य आचार्य गुरु वैष्णव की कृपा से, उसी तरह हम लोगों को भी कथा के माध्यम से कृष्ण में सहज अनुरक्ति और संसारिक वस्तु और संबंध से सहज निवृत्ति प्राप्त हो सकती है और इस करने के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए और वो प्राप्त होता है केवल कृष्ण कथा रस से। क्योंकि उज्ज्वल जब दिव्य रस की प्राप्ति होती है तो निकृष्ट रस स्वाभाविक स्वतः छूट जाता है और देखा जाता है कि आज का 90% समाज जो है वो संसारिक भौतिक कामों में रचा पचा 30% हॉल में इतनी भारी संख्या में कृष्ण कथा के लिए लोगों का आना ये सहज प्रकट करता है कि आप लोगों की कृष्ण कथा में कितनी रुचि है और इसीलिए कथाकार वक्ता भी सहज भाव से आनंद से कथा कहते हैं। और विशेष प्रसंग तो जैसे होता है ना कि श्लाघ्यतम बलि वामन महाराज का प्रसंग जो 15वें अध्याय से 23वें अध्याय तक है अष्टम स्कंद में तो स्वाभाविक इस प्रसंग में सिद्धांत तत्व शिक्षा नीति और लीला रस से परिपूर्ण होने के कारण श्लाघ्यतम प्रशंसनीय है और ऐसे प्रसंगों में कौन सा प्रसंग किस रूप में कितना महान है कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी अंतर निकाला जा सकता है। तो हम जहां तक समझे हैं तो ये जो प्रथम 18वें अध्याय से महाराज जी जो कथा चालू किए तो श्लाघ्य अति प्रशंसनीय प्रसंग रहा लेकिन उसके बाद भी जब भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में गए और जाने के बाद जब छल पूर्वक महाराज बलि की प्रशंसा उनकी कीर्ति उनकी ख्याति को बढ़ाने के लिए और अपने देवराज इंद्र का कार्य साधने के जिस कारण से अवतार हुआ था लेने के लिए जब गए और वहां जो वार्तालाप है वास्तव में श्लाघ्यतर रहा बलि महाराज का और वामन देव का जो संवाद है वो वर मांगने की पहले की बात कह रहा हूं और वास्तव में श्लाघ्यतम जिनको कहा जाए वो तो बांधने के बाद जो बलि महाराज की युक्तियां है पिता महो में भवदीय सम्मत प्रहलाद साविष्कृत साधुवाद बहुत ही कहता है कि वास्तव में देखिए कितनी ऊंची स्थिति है आत्मनिवेदन क्या है यहां पर प्रकट हो रहा है कि जिन बलि महाराज को उनके ही प्राणदाता गुरु ने त्याग कर दिया और श्राप भी दे दिया और उनके परिजन छूट गए यहां तक कि जिस भगवान की जिस ब्राह्मण की सेवा के कारण उसको छोड़े वही भगवान उनको निंदनीय वचन कहने लगे और इतने पर भी उसको एक अपराधी की तरह आत्मनिवेदन के आचार्य को अपराधी की तरह बांधा गया तीस पर भी बलि महाराज के मन में सहज लेश मात्रम अपी भी भगवान के प्रति ना तो दोष दृष्टि हुई उल्टा अनुग्रह और अनुकंपा का अनुभव कर रहे हैं। तो वास्तव में ये श्लाघ्यतम है और आज के ही भी कहीं श्लोक है लेकिन महाराज जी जल्दी में थे हम आश्वासन अहो अहम नश्यम जैसे कहा गया सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरिणा नारायण अंति के अभी बाजू में बैठे प्रभु जी हमको सुना रहे थे गौरकृष्ण प्रभु पढ़े थे हम भी चक्रवर्ती पाठ इस पर लिखे है हरि नारायण अंति के हरि शब्द को कहते कि बलि महाराज के संबंध से शुक्राचार्य के दोष अपराध को हरने वाले हरि एक प्रश्न होता है ना, आप देखिए विचार करिए प्रसंग पर, कि बलि महाराज इतना रोका गया शुक्राचार्य ने, फिर भी क्यों वो प्रशंसनीय रहे, या तो भगवान ने क्यों उनको फिर भी महत्ता दी। एक हमारा ये प्रश्न था मन में भी, हम पहले भी एक महात्मा से किए थे, तो इसी युक्ति को लेकर वो कह रहे थे कि शुक्राचार्य बलि महाराज का धन संपत्ति बढ़ाना चाहते थे और बचाना चाहते थे, तो बाधा हो गई कि भगवान बीच में आ गए। लेकिन आप अंतिम तक विचार करें तो बात यह प्रकट होती है कि फिर भी भगवान का शुक्राचार्य के ऊपर प्रेम रहा। क्यों? क्योंकि अपने भक्त का ही तो धन बचाना चाह रहे थे ना शुक्राचार्य। बलि महाराज की वो धन बचाना चाह रहे थे, बलि महाराज तो भगवान के विशेष अनुकंपा पात्र भक्त हैं। तो इसीलिए भगवान इस बात पर जोर मतलब विचार करते हुए, तो इस तरह से बहुत कुछ है, लेकिन हम उतने सक्षम नहीं है कि जो हमको प्राप्त हुआ है वो कम समय में आपको प्रस्तुत कर पाए, और कुछ मन में इच्छा भी कम रहती है प्रस्तुत करने की, क्योंकि गोपनीय हम तो छुपा कर ले जाना चाहते हैं इसी को हृदय में। लेकिन हमारा सबसे बड़ा भाव को याद आ रहा है सुखदेव परीक्षित महाराज का वो वाक्य, वयम धन्य तमालोके गुरु पिशत्र बंधव यद पिवाम मुहस्तम पुण्यम कृष्ण कथामृतम। हम अपने आप के जीवन को बहुत धन्य समझते हैं कि महाराज जी जो इतने उच्च भक्ति साम्राज्य के शिखर पर स्थित होते हुए भी जिनका चित भगवत कथाओं में लगा रहता, लीला कथा रस उन्मत्ता चित वाले व्यक्ति भी, जिनका अदोषदर्शी साधु स्वभाव के कारण मुझ जैसे दोषार्णव में निमज्जित अधम को भी अपना शिष्य ग्रहण किए, तो ये हमारे लिए वास्तव में धन्य की बात है। और उसके बाद भी सनातन गोस्वामी की उस टीका के अनुसार मैं पूरा मिलान मन में करके इतना प्रसन्न हूं, वो कहते हैं कि तब शिष्यत्व ग्रहण धन्यम और कृष्ण कथामृतम गतवानम, कृष्ण कथामृत ग्रहण करने से धन्यतरम और मुहुर मुहुर कृष्ण कथा पानामृत धन्यतम। तो वही अनुभव मैं अपने आप को कर रहा हूं कि बार बार परोक्ष रूप में या तो प्रत्यक्ष रूप में महाराज जी की कृपा से हमको कृष्ण कथा में चित भी लगता है, समझ में भी आने लगा है और हम कहने का भी प्रयास करते हैं, तो हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आप सभी वैष्णवों के चरणों में और महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि इस भागवत के इस गुह्य रसमय तत्व लीला को आचार्यों के अनुसार यथार्थ रूप में समझ सके और प्रस्तुत कर सके जीवन में, इसी में चित लगा रहे, यही प्रार्थना के साथ। हरे कृष्ण। श्री कृष्णपाद महाराज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद की।
धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद देते हैं। और इसके उपरांत मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रजेंद्र कुमार प्रभु से, कृपया आए दोष अनुमोदन के रूप में साथ ही साथ में मैं एक आपको सूचना देना चाहता हूँ। आज आप लोग कथा इस कक्ष में आने के पहले आप लोगों को एक डॉट ऑफ फॉर्म एक चिट्ठी आपको दिया गया था, कृपया सभी उसमें अपना जो पूरा विवरण दे दीजिए, ताकि जब भी ऐसे महोत्सव हो और आपको हम बार बार संपर्क करते रहेंगे, उसके लिए आपका पूरा विवरण में जरूरी है। कृपया लिख के आप यहाँ बाहर जाने के पहले बॉक्सेस रखे हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं, या मंदिर के भक्तों के पास भी उचित दे सकते हैं।
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पितरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य महाराज जी, उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद और भक्तिमती माताएं, यहां 7 दिन से हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका मूल कारण है कि श्रोता और वक्ता दोनों का लक्ष्य एक है। श्रीमद् भागवत महात्म में वक्ता और श्रोता का लक्षण लिखा गया है कि यदि वक्ता कृष्णार्थी है और श्रोता भी कृष्णार्थी है तो वहां पर श्रीमद् भागवत का जो रस है वह अपूर्व रस प्रवाहित होता है और उसमें बहुत बड़ा सुख मिलता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब होते हैं श्रोता वक्ता तो वहां पर कथा का रस प्राप्त नहीं होता है, केवल मनोरंजन हो सकता है लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो वस्तु कितनी भी अच्छी है लेकिन जब वह किसी वस्तु के अंदर पैक है, बंद है, तो उसको भी आस्वादन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसका जो मर्मज्ञ है, जानकार है कि कैसे उस वस्तु को निकाल करके और पिलाया जाए, खिलाया जाए, और वह खिलाने के जो कला है उसके अनुसार खिलाया जाता है तो खाने वाले को बहुत रस मिलता है, सुख मिलता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के शब्दों में रस भरा हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ करके उस रस को, शब्द रूपी रस को हम प्राप्त नहीं करते हैं, उतना रसास्वादन नहीं करते हैं। लेकिन उसी रस को जो जानने वाले हैं, जो आचार्यों के मुख से पढ़े हैं, सुने हैं और उसकी कला जानते हैं, स्वयं उसका आस्वादन किए और आस्वादन करने के बाद उस रस को पिलाते हैं तो अपूर्व सुख मिलता है खाने वाले को, पीने वाले को। तो यहां पर महाराज जी के मुख से हम लोग श्रीमद् भागवत के अर्थों का रसास्वादन किए। भक्ति के 5 साधन में है, महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को 5 साधन बताया था, मूर्ति का सेवन, ब्रज में वास, साधु संग और स्ववासना विशिष्ट भक्तों का संग, और भक्तों के साथ में श्रीमद् भागवत के शब्दों के का रसास्वादन करना। तो यहां पर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के जो शब्द के अर्थ हैं उनके अर्थों पर विचार किया गया और बहुत सुख मिला। उसमें सुख के कारण महाराज जी हैं, क्योंकि उनका जीवन ही श्रीमद् भागवत में है। वे स्वयं डुबकी लगाते हैं, इसका आस्वादन करते हैं और करने के बाद तब हम लोगों को कराते हैं। कथाएं तो बहुत होती हैं, सुनने को मिलती हैं, लेकिन वे कथाएं हृदय को स्पर्श नहीं करती हैं। लेकिन वही जब महाराज जी के मुख से श्रीमद् भागवत के अर्थों का विशेष अर्थ जब करते हैं तो वह हृदय को स्पर्श करते हैं, अपने ओर खींचते हैं। यह इस कथा की विशेष महत्व है, यह अन्यत्र सुलभ नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सी कथाएं सुना है वृंदावन में, अन्यत्र भी, लेकिन कथाएं हैं लेकिन उसमें वह सुख, यह सुख नहीं प्राप्त होते हैं। एक के बाद एक बात हृदय में बैठते जाते हैं, जैसे मिस्त्री जो है ईंट के ऊपर मसाला रखकर अच्छी तरह बैठा देता है, वैसे ही जब महाराज कथा कहते हैं तो उस कथा का असर हृदय पर पड़ता है, उसकी बातें हृदय में पूर्ण रूप से बैठती जाती है और भगवान में भगवान की लीला के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। तो यह कथा की विशेषता है। वस्तु कितने भी अच्छी है लेकिन उसको खिलाने की यदि कला मालूम नहीं है तो उसको हम रसास्वाद नहीं कर सकते। जब जैसे खिलाने की कला माँ जानती है, वैसे ही श्रीमद् भागवत के अर्थों का स्वादन कराना जो आचार्य बिंद हैं वे जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जान सकता, उन्हीं की कृपा से और कोई जान सकता है, अपने प्रयास से नहीं जान सकता है। यह भागवत जो है कृपा साध है, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम उसको अपनी विद्वत्ता से अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। यह कृपा साध है, जिस पर कृपा होती है वही समझ सकता है। वामन भगवान का अवतार उस समय हुआ जिस समय इस पृथ्वी पर इस संसार में असुरों का साम्राज्य था, प्रभाव था। ऐसे भगवान के अवतार के कई कारण हैं। भगवान के सभी अवतार मंगलमय हैं और उनके अवतार के विविध प्रयोजन होते हैं। तो इस अवतार का प्रयोजन है असुर से राज ले करके और अपने भक्त इंद्र को देना, इसके लिए भगवान का यह वामन अवतार हुआ। तो भगवान इस अवतार में अवतार लेकर अपने भक्त की इच्छा को पूरा किए। भगवान बलि महाराज के जग में जाते हैं तो भगवान वहां बलि महाराज की प्रशंसा करते हैं। इस प्रसंग में महाराज जी ने बताया कि यदि किसी से कुछ प्राप्त करना है तो उस व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। जब तक प्रशंसा नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनता है। तो भगवान भी संसारिक आदमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो बलि महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके पूर्वजों की प्रशंसा कर रहे हैं। जब भगवान को बलि महाराज देने जा रहे हैं, अपना संकल्प पूरा करने जा रहे हैं, तो शुक्राचार्य जी मना करते हैं। शुक्राचार्य जी को जो बात है वो लौकिक दृष्टि से बिल्कुल सत्य है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, शुक्र नीति प्रसिद्ध भी है, तो उन्होंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक किया, लेकिन वो लोक दृष्टि से परमार्थ दृष्टि से वह ठीक नहीं है। जहां पर स्वयं भगवान मांग रहे हैं और उनको देने से कोई व्यक्ति मना करता है तो यह उचित नहीं है। वह उसकी बात की शोभा नहीं हुई है, उसकी बात मान्य नहीं है। मना करने के बाद यही परीक्षा है, भक्तों की दृढ़ता की परीक्षा है। ऐसे कोई भक्ति करता है तो उसका वो महत्व नहीं है। विविध प्रकार की बाधाएं आने के बाद, संकट आने के बाद जो अपने धर्म पर अटक रहता है, दृढ़ रहता है और दृढ़ रह करके भगवान की भक्ति करता है तो वह श्रेष्ठ है, महान है। सबके बावजूद अपना अपमान सह करके, अपने राज का त्याग करके, अपने गुरु की अवहेलना करके बलि महाराज ने भगवान को अपना सर्वस्व दे दिया। जिस तरह से गोपियों ने भगवान के लिए त्याग किया, उन लोगों के सामने भी बड़ी समस्या थी। संसार के लोग के बाधाएं थी, उनके पति भी विरोध किए, लेकिन सबका सर त्याग करी कर कृष्ण रे भजन, भगवान के भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए सबका त्याग किया जा सकता है। इसके लिए गोपी जनों ने अपने परिवारों का, अपने पतियों का त्याग कर दिया। तो भगवान के लिए त्याग करना यही वास्तविक धर्म है, क्योंकि संसार में जितने वस्तुएं हैं वो भगवान का है, हमारा नहीं है। इसलिए उनके लिए त्याग करना यही स्वाभाविक धर्म है, कर्तव्य है। तो बलि महाराज ने किया, सब बाधा आने के बाद भी, गुरु महाराज के द्वारा अपमान होने के बाद भी, यहाँ तक गुरु जी ने उन्हें श्राप दे दिया, धन से चित कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान के लिए उन्होंने सब स्वीकार किया। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को देने के लिए उन्होंने अपना अपमान सहकर ही भगवान को दिया, राज को त्याग दिया भगवान के लिए। यही वास्तविक भक्ति है, भगवान को देना, जैसा कि बलि महाराज ने किया। इसमें जो भी बाधाएं आता है, उस समय ऐसे संसार में गुरु का आज्ञा का पालन करना शिष्य के लिए कर्तव्य है, लेकिन जहां परम धर्म है, परम धर्म के पालन में यदि गुरु की आज्ञा यदि बाधित होती है तो वह अवमान्य है, उसकी मानना नहीं है, वह त्याज है। भक्ति में जो बाधाएं हैं उसको त्यागना और जो उसको अनुकूल है उसको ग्रहण करना, इसी को भक्ति कहा जाता है। अनुकूलेन कृष्णानुसेनलम भक्ति रुत्तमा, यही उत्तमा भक्ति है। तो भक्ति का सर्वोच्च स्थान यही है, जैसा भगवान को देना सब कुछ अनुकूल भाव से। ऐसे भगवान को कैसे भी देंगे तो ठीक है, लेकिन अनुकूल भाव से देंगे तो यह उत्तम है, जैसा कि बलि महाराज ने त्याग दिया। और त्यागने के बाद महाराज इस प्रसंग में बता रहे थे कि भगवान को देने के बाद यदि कोई संसार में धनहीन हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो उसकी कीर्ति घटती नहीं है, बढ़ जाती है, क्योंकि उसने भगवान को दिया। इस संसार में कोई दुष्कर्म करके धन का त्याग कर देता है तो समाज में वह निंदनीय होता है, लेकिन भगवान को दे करके कोई अपने धन से हीन हो जाता है तो इसमें उसकी शोभा नहीं है, यही शोभा है भगवान को देना, इसी में शोभा है, यह शोभन कार्य है। तो बलि महाराज की इसकी कीर्ति और बढ़ गई, घटी नहीं बढ़ गई। उसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान ने उनके स्वर्ग के राज ले करके और उनको उससे भी उत्कृष्ट संपत्ति उनको दिए, वैकुंठ का हिस्सा सूतर लोग, और घाले रूप में स्वयं भगवान बंध गए। जैसे दुकानदार के पास जाते हैं तो आप वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु के बदले में वस्तु का दाम देते हैं, वस्तु मिलती है, लेकिन कुछ बदले में फ्री में मिल जाता है। जैसे आज भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि इतना खरीदेंगे ये वस्तु फ्री है। तो भगवान ने अपने को घालू रूप में उनको दे दिया। पूतना वध में यह बताया गया है कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए गई तो भगवान ने उसको माता का स्थान दिया, और तो जो भगवान की भक्ति अनुकूल भाव से करते हैं उनको भगवान क्या देंगे। तो ऐसे भक्तों को स्वयं भगवान अपने आप को दे देते हैं। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है और निष्प्रिय सेवा करता है निष्काम भाव से, तो ऐसे भक्त को भगवान स्वयं अपने को दे देते हैं। यह भगवान का स्वभाव है, यह अन्य किसी में नहीं, यह भगवान में ही है कि भगवान अपने को दे देते हैं। जैसे बलि महाराज को भगवान ने अपने आप को दे दिया, तो इससे भक्ति में दृढ़ता प्राप्त होती है। तो इस तरह से कैसे, जिस तरह से भगवान ने भगवान से बलि महाराज प्रेम किए और उनको उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, उन्होंने अपने यह कहने के लिए अपने कोई वस्तु नहीं रखा कि संसार में हमारा है। इसीलिए जब भगवान ने उनको कहा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो बलि महाराज ने यही कहा कि प्रभु यह शरीर भी एक खेत है, धन संपत्ति है, तो मैं चाहता हूं कि संसार में हमको कुछ कहने के लिए न रह जाए कि संसार मेरी वस्तु है, तो यह शरीर अभी रह गया है, इसलिए आप अपना तीसरा पैर जो है हमारे सर के ऊपर रखिए। आपने सब कुछ ले लिया लेकिन हमको नहीं लिया, इसलिए आप हमको अपना लीजिए। मानस देहा गया जो कुछ मोर हर पिलुतवा पदे नंद किशोर, हमारे पास जो कुछ है नंद किशोर वो आपका है, धन संपत्ति बाल बच्चे सब कुछ। तो इस संसार में जो कुछ वस्तुएं हैं सब भगवान की है, हम बीच मान लेते हैं कि मेरी है, यही जीव की अज्ञानता है। तो जो भक्त होते हैं उनका सब कुछ भगवान का होता है और उनको देने में भक्तों को सुख होता है, भार महसूस नहीं होता है। भक्त लोग स्वतः त्याग कर देते हैं भगवान के लिए। इसलिए शुक्राचार्य जी के समझाने के बाद भी कि भगवान है सब कुछ ले लेंगे, फिर भी बलि महाराज से डिगे नहीं, उन्होंने कहा कि जब भगवान है तो हम नहीं भी देंगे तो ले लेंगे। इसलिए अच्छा है कि लेने के पहले ही स्वतः दे दे भगवान को। और जो स्वयं भगवान जो तीन लोक के मालिक हैं, जो ईश्वर हैं विष्णु हैं, और स्वयं मुझे मांगने के लिए आए हैं भिखारी बन करके, तो मांगने पर नहीं देना यह उचित नहीं है। तो बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को दिया, और जिस तरह से बलि महाराज ने भगवान से प्रेम किया वैसे हमें भी उन्हीं की तरह दृढ़ता पूर्वक दृढ़ भक्ति जो है सबसे उत्तम है। भजनते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रती होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम जैसे भगवान को जिस तरह से अपनाएंगे भगवान वैसे हमको अपनाएंगे, यही भक्ति में दृढ़ता है अनुकूलता है। तो इसी तरह से हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर जो आयोजन हुआ बहुत अच्छा लगा, यहाँ भक्तों का संग प्राप्त हुआ, क्योंकि संसार में भक्त साधु संग बहुत दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ हो सकता है संसार में, लेकिन भगवान के भक्तों का संग यह बड़ी दुर्लभ है। जब बहुत बड़ी कृपा होती है तो ऐसे भक्तों के संग प्राप्त होता है और उनके संग में भगवान की कथा सुनने को मिलती है। यह भक्तों के संग में ही इस तरह का सुख प्राप्त होता है। जब तक भक्तों के बीच में भागवत की कथा नहीं होती है तो ऐसा सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भक्तों के बीच में जब जोग पात्र मिलते हैं तो गुरुजन अपना हृदय ही बहा देते हैं। हृदय में जो उनकी गुढ़ गोपनीय बात है, जैसे भगवान ने अर्जुन को सर्वगुह तमम भूय श्रेण में परमम बचा, अर्जुन जोग पात्र थे इसलिए भगवान ने अपनी गुह बात जो नहीं कहने वाली बात भी उनको बता दिए। ऐसे ही गुरुजन जो होते हैं आचार्य बिंद होते हैं, जोग पात्र जोग शिष्य को प्राप्त करके जोग श्रोता को प्राप्त करके अपना हृदय में जो उनके भरा हुआ जो कृष्ण प्रेम है जो रस है उसको उदार भाव से पिला देते हैं प्रवाहित करते हैं, और भक्त लोग उसमें स्नान करके पी करके तृप्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन यह श्रीमद् भागवत ऐसा रहस्य है, वयम तु नव तृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रम है, इसे पीने के बाद और पीने की लालसा बढ़ती है। जैसे किसी व्यक्ति को थोड़ा सा स्वादिष्ट वस्तु खिला दीजिए तो उसके खाने की जो इच्छा है वह बढ़ती जाती है, घटती नहीं तृप्ति नहीं होती है। वैसे ही यह श्रीमद् भागवत का जो रहस्य है हम जितना पीते हैं पीने की जो लालसा है बढ़ती जाती है। तो यही भक्ति है, लालसा का होना लौल्यम, जो लौल है सुनने की इच्छा बढ़ती जाए यही भक्ति श्रेष्ठ है। इसका एक मार लौल होना लालसा, जैसे लोभी व्यक्ति को धन प्राप्त करने की लालसा होती है, काम ही नारी प्यार जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। उसी तरह से धनी व्यक्ति की तरह जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो सुनने की और लालसा बढ़ती जाती है, तृप्ति नहीं होती है। तो यही भक्ति का सार है, उत्कृष्टता है, तृप्त न होना। को रसवित कथा आयाम, वह ऐसा कौन है जो इस कथा रूपी रस से तृप्त हो सकता है, इसे तृप्ति नहीं हो सकती और बढ़ती जाती है। तो यही बढ़ना यही भक्ति का सर्वोत्कृष्टता है, और सुनने की लालसा। तो हम लोग महाराज के मुंह से कथा सुनते हैं तो तृप्ति नहीं होती है, लगता है कि और सुनने को मिले और सुनने को मिले। इसलिए महाराज संक्षेप में कहते हैं तो कथा अच्छी नहीं लगती है। जब महाराज शब्दों के एक एक अर्थ का विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं, उसमें क्या रस भरा हुआ है, तो उसको जब हम लोग सुनते हैं तो बहुत सुख होता है। लेकिन जब महाराज कोई श्लोक जल्दी कह देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हमें नहीं, सब भक्त प्राय अनुभव करते होंगे। तो इसलिए हम तो ही चाहते हैं कि महाराज को इतना कोई भी प्रसंग जल्दी नहीं कहनी चाहिए, जितना हो अच्छा है। कोई जरूर नहीं कि पूरा प्रसंग पूरा ही हो, जितना हो विस्तार से हो, रसमय हो, इसमें सुख मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ बाण का विश्राम है। हरे कृष्ण।
इनके कहने का आशय था बोले का कि प्रसाद वगैरह आने के लिए कोई समय ना दे रहे, महाराज जी कथा को ही बोलते रहे। अभी मैं श्रीमान नमस्कार प्रभु को बुलाता हूँ। नमस्कार प्रभु, आपका दो शब्द जो है वो शुरू में रहता है। नमस्कार प्रभु इसका मॉडल के उपाध्यक्ष भी है और इस कथा आयोजन करने में बहुत ही मुख्य पात्र निभाए हैं। आप सब की ओर से मैं आभार देता हूं और आगे आने वाले सभी अनुमोदन करने वाले भक्तों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, समय को देखते हुए केवल एक दो मिनट में मेरे पास लंबी लिस्ट है, एक दो मिनट में ही जो समाप्त। हरे कृष्ण।
जैसे प्रभु जी ने बताया कि पात्र निभाया, ये महाराज श्री कृपा है। और यहाँ पर महाराज श्री के द्वारा ये आज से करीब 4 साल पहले कथा हुआ था, जब सेक्टर 56 में अपना मंदिर था इस्कॉन, उस समय हुई थी। तो उसके बाद महाराज जी ने इस बार बड़ी कृपा किया कि कई वर्षों के बाद हमको ये मौका मिला है सेवा करने का महाराज जी का। तो कथा जब हम लोग समय लिया था तो सोच रहे थे कि महाराज जी कोई भगवान की वृंदावन लीला या और कोई लीला संबंध बताएंगे। तभी कुछ दिन पहले भक्त लोग गए थे ब्रजवक्तिपुर और भक्त लोग गए थे महाराज जी से मिलने के लिए। तो सोचा था कि 52 द्वादशी है, उस दिन कथा जो प्रारंभ हो रहा है 52 द्वादशी है। तो ये मेरे मन में बार-बार विचार आया था कि महाराज जी हो न हो 52 भगवानी कथा कहेंगे। ये मेरे मन में विचार आ रहा था बार बार कि हो न हो महाराज जी 52 भगवान की कथा कहेंगे। तो भक्तों ने बताया कि महाराज जी ने 52 भगवान की कथा कहने का ये बताया है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुआ इस प्रसंग को सुनकर के, क्योंकि ये जो प्रसंग है भागवत का जो बलि महाराज का, वास्तव में एक भक्तों को उत्साह वर्धन करने वाला प्रसंग है। किस प्रकार से बलि महाराज ने अपने आप को सरेंडर किया है भगवान के चरणों में, जबकि असुर कुल में है और उनके गुरु शुक्राचार्य भी मना कर रहे हैं। एक तरह से बड़ी कठोर परीक्षा है और उस कठोर परीक्षा को हर तरफ से उनके सामने अड़चने आ रही हैं। यहां तक बता दिया कि आपके जो शत्रु हैं वही आए आपसे दान मांगने के लिए, लेकिन फिर भी बलि महाराज जो है इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए कि नहीं, अभी दान देना है भगवान की, यदि विष्णु ही आए हैं तो अवश्य दान दूंगा। तो ये देखा जाता है वास्तव में कि किस प्रकार से अपने आप को आत्मसमर्पण करना चाहिए। तो महाराज जी ने बड़े ही सुंदर एक विस्तार से उस प्रसंग को बताया हम सभी के लिए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुआ महाराज जी का एक सेवा का मौका मिला यहाँ सेवा करने का। और ये जो श्लोक अंतिम श्लोक था उसमें एक शब्द भगवान ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई उस शब्द को सुन। महाराज जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या किया उस श्लोक के ऊपर। भगवान स्वयं कहते हैं वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाही सुतलालयम। एक वत्स कह के जब कहते हैं बेटा, एक पुत्र जैसा भगवान अपने आप को एक पुत्र प्रहलाद कहकर उस शब्द को बोल रहे हैं, वत्स कहकर कह बोल रहे हैं। तो जो वत्स शब्द जो है एक बहुत ही हृदय को द्रवित करने वाला शब्द है, जो कि एक अपनापन महसूस करता है उसमें, जो कि कह रहे बेटा आप जाइए सुतल लोक में और मेरा वहां दर्शन करेंगे। तो प्रहलाद जी को बड़ा दुख हो रहा था कि ये एक तरह से मेरे प्रपद जो पुत्र है बलि महाराज उसको सुतल लोक भेजा रहा है, और भगवान ने बड़ी कृपा की है, बड़ी प्रसन्नता भी थी, और एक तरह से ये सोच रहे थे कि अभी भगवान का दर्शन नहीं होगा, मेरे को अलग किया जा रहा है, वहां सुतल लोक भेजा रहा है। लेकिन जो वत्स शब्द कहा तो उसमें प्रहलाद महाराज बड़ी द्रवित हुए और उनकी आज्ञा को श्रद्धार किया प्रहलाद जी ने। तो महाराज जी ने इसको बड़ा सुंदर ढंग से बताया, और भी महाराज जी ने स्वयं के भागवत जो चैतन्य चरितावत प्रसंग था चल रहा था उसमें महाराज जी बड़ा ही एक भक्ति प्रसंग जो है बड़े विस्तार से जो श्री रूप शिक्षा है उसको महाराज जी ने बताया है। तो इसके लिए मैं महाराज जी का बड़ा आभारी हूँ, और महाराज जी के श्री चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए महाराज जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि महाराज जी ने बड़ी कृपा किया है, और आज कई भक्तों ने मुझे दिन में बताया कि महाराज जी से प्रार्थना करिए साधन की कथा चल रहा है। तो महाराज जी 21 दिन की कथा क्यों न करें यहाँ पर या और भी विस्तार से कथा होना चाहिए महाराज जी का, इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, कथा रुकना नहीं चाहिए ऐसा भक्त बता रहे थे। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर कथा सुनाया हम सभी के लिए। तो मैं यहाँ पर और भी कई भक्त आए हैं, उनके प्रति कोई मेरे से कोई त्रुटि हुई हो या मंदिर भक्तों से कोई त्रुटि हुआ हो, असुविधा हुई हो प्रसाद में या रहने में, और महाराज जी के प्रति कुछ त्रुटि हो तो मैं महाराज जी से चरणों में और भक्तों के सभी के चरणों में वंदना करता हूँ कि अपराध को क्षमा करें। यही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।
अभी मैं श्रीमद सनातन गुरु से प्रार्थना करता हूँ, आइए दो शब्दों में अपना कथा के प्रति अनुमोदन व्यक्त करें। साथ ही साथ में आप सबको एक संतोषदायक हृदय को बहुत ही संतोष देने वाले जो सूचना महाराज श्री से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, महाराज श्री भी इसको अनुमोदन दिए हैं, माने हैं। प्रति वर्ष एक कथा इसका वर्णन जरूर है, समय जो है आप लोग जैसे हर साल का वहां जो नोटिस बोर्ड पूरा ईयर का प्लान जो है हमारे फेस्टिवल्स का लगाया जाएगा, वहां आप देख सकते हैं हर साल जो है महाराज जी का कथा का डेट रहेगा।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी पिछले 7 दिन से लगातार महाराज जी का संग प्राप्त हुआ है, जिसमें श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण हुआ। ये श्रीमद् भागवतम कथा श्री भगवान की करुणा है, करुणा रूप में श्री महाराज जी ने हम सबको ये करुणामृत पान कराया। सब जैसे श्रीमद् भागवत मंत्र में कहा जाता है कि निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतम यथा, वैश्वानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार नीचे बहने वाली नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और देवादि देवों में भगवान अच्युत यानी श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, और वैश्वानाम यथा शंभु, और वैष्णव में जिस प्रकार शंभु शिवजी श्रेष्ठ हैं, पुराणा नाम एदम तथा, उसी प्रकार सभी पुराणों में श्रीमद् भागवतम महापुराण जैसे कहा जाए सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा कलयुग में ये श्रीमद् भागवतम जीवों के कल्याण के लिए भगवान अपनी कृपा छोड़ के गए, लेकिन इसको सुनते तो बहुत कुछ हैं। जैसे कि महाप्रभु चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो उनके सेक्रेटरी पर्सनल श्री स्वरूप दामोदर जी गोस्वामी जो महाप्रभु चैतन्य के दर्शन करने आते थे तो उन सबको बताते थे कि श्रीमद् भागवतम भागवत से ही सुनना चाहिए जाके, ये मुख्य विशेषता बताई जाती है। इसी बात को सनातन गोस्वामी ने लिखा है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूवते हरि कथामृतम न श्रवण एव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यथापया। भागवतम बहुत चलती रहती है और जब तक पंडाल में बैठे रहते हैं तब तक ठीक है, कुछ देर गंभीरता रहते हैं और जैसे ही पंडाल से बाहर निकलते हैं या बाहर रहते हैं अपने, फिर उन्हीं वैसा स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो कारण यही होता है कि अवैष्णव, ये वैष्णव परंपरा से जो आए हुए आचार्यगण और जिन्होंने सत असत का सही से बोधन कर लिया है, तो ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा जब शब्द जो बाहर आता है उससे ये हृदय की कलुषता ठीक होती है। आप ये तम कड़क साशान भागवत में कहा गया, तभी ये संभव होता है। तो ये मुख्य विशेषता आपने यहां पर देखी हो, इसका लक्षण आप देख रहे हो कि यथावत कैसे हमने जगह का संकोच होता हुआ भी, संकोच होता हुआ बैठ नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी गंभीरता से कोई हिलडुल नहीं रहा है, इसी लक्षण पता चल रहा था। तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम कथा जो हम सबको यहां उपलब्ध हुआ महाराज जी के द्वारा, और इसमें विशेष प्रसंग जो मुझको बहुत ही प्रिय लगा, इस प्रसंग में कई शिक्षाएं मिली हैं, कई तरह का धर्म का वर्णन हुआ है इसमें। तो जिसमें बलि महाराज के यहां भगवान याचना करने के लिए पहुंचते हैं तो कई तरह से उनके पीछे की उनके पूर्वजों आदि की प्रशंसा बताते हैं वहां पर कि जो आपके अनुरूप है, आपके धर्म के अनुरूप जो आप बोल रहे हो कि मैं दूंगा दान, तो ये धर्म है आपका, आप सही बोल रहे हैं इसको, क्योंकि आपके ऐसे पूरा जो रहे हैं पीछे, आप प्रहलाद महाराज के वंशज हो, इस तरह से उन्होंने याद दिलाया उनको जाकर। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब अपना सब कुछ तैयार हो जाते देने के लिए तो उस समय शुक्राचार्य जी आ जाते हैं और उसमें गृहस्थ लौकिक धर्म की स्थापना सृष्टि करते हैं शुक्राचार्य जी। ये सब सुनने के बाद बलि महाराज इसको निरस्त कर देते हैं कि गृहस्थ जीवन ही लौकिक धर्म निभाना, ये सब कुछ नहीं, परम धर्म क्या है। इसलिए बावन भगवान शुरू में कहा कि आप प्रहलाद महाराज की वंशज हो, प्रहलाद महाराज के याद करो जो कितनी विपत्तियां आने पे भागवत धर्म भगवान को नहीं छोड़ा जाके, तो इस संत का लक्षण होता है चतुक्षुवा कानों का संत, सहन करना। तो महाराज बलि ने जो 12 महाजन भागवतम में आते हैं तो उसमें बलि महाराज भी आते हैं, और नवदा भक्ति को जो प्रहलाद महाराज ने स्थापन किया है तो नवदा भक्ति में भी बलि महाराज का जो आत्मनिवेदन है जो इनकी इनकी द्वारा इस जगह स्थान ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार कई तरह के संवाद आए इसमें लोक विहार जीवन में शुक्राचार्य के द्वारा कि किस तरह धन को कितने भागों बांटे वो इस लोक परलोक में सुखी रह सकता है, तो वो भी हमको बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होता है। और आज ही आज में जो अभी आज एक श्लोक गया है इसमें और बड़ा मनोबल मिलता है, जो यज्ञ पूरा होने के लिए शुक्राचार्य जी को भगवान ने कहा उसमें एक श्लोक जो बोला है उन्होंने, मंत्र तस्त छिद्रम देश काल हो वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम, सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव, सॉरी, मनुष्य सभी अगर कोई कार्य करता है घर में, कोई गृह प्रवेश करता है, कोई यज्ञ कराता है, कलयुग में चीजों का अभाव है हर चीज का, अपना प्रयास करके पूरा करे वो व्यक्ति, और इसके बाद में किसी तरह का कोई अभाव हो जाता है, महाराज जी ने व्याख्या कर चुके हैं इस पे, किसी वस्तु का अभाव है, मंत्र उच्चारण करने में जैसे अभी अभी मैं भूल गया, तो ये शुद्ध नहीं मतलब किया जा सकता है, ये कलयुग में इन चीजों का अभाव है, शुद्ध वस्तु उपलब्ध नहीं, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, लेकिन व्यक्ति ऐसा करके वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे तो ये आज के युग की बात नहीं, ये सतयुग की बात है। तो तब जो इतना प्रभावकारी जो बताया गया तो आज कलयुग में तो है ही है। तो जो यहां पर ये संस्थान ये प्रमाणक जो बोला जाता है ये कोई वैसे नहीं है। तो इस व्यक्ति को हम शिक्षा ले सकते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में भी कि कोई किसी तरह के हो बाद में ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, इस महामंत्र के द्वारा उसकी त्रुटि पूर्ति सामग्री सब कुछ ठीक हो जाता है। ये शास्त्र द्वारा प्रमाणित हो गया, इसमें हमें किसी तरह कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार हम गुरु महाराज के भगवान के चरणों में प्रणति अर्पित करते हैं, ऐसे आचार्यों को सद्भक्तों को सदैव हमको संग प्राप्त होता रहे, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहे। और मेरी सदैव ये इच्छा होती है ऐसे भक्तों को किसी जीवन में कहीं भी चला जाऊं ऐसे शुद्ध भक्तों को मुझे संग प्राप्त हो। हरे कृष्ण।
अभी मैं मोक्षतम अंदर जिसे विनती करता हूँ दो मिनट के लिए अपना अनुमोदन सुना।
बंसीधर प्रभु किधर भी हो यहां मंच पर आए।
ये जो शब्द महाराज ने पूरा सप्ताह हमें यही पिलाया, भगवत रस हमें पिलाया महाराज ने। कारण महाराज महाभागवत, तो हमारा हृदय में स्पर्श किया। शाम को सुबह का टाइम महाराज ने चैतन्य चरितमृत पाठ किया। पहले मैंने चैतन्य चरितमृत लिया था लेकिन खुद पढ़ती थी। एक हफ्ता हो महाराज से सुनने के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु से मेरा प्रेम बढ़ा। इतना आनंद अनुभव किया मैंने, मैं कह नहीं सकती। ये कारण महाराज का, महाराज परम वैष्णव है इसीलिए। तो महाराज से अनुरोध है, महाराज का चरण साल में एक बार दो बार नोएडा पे रखे। तो हम भव रोगी है, हमारा जो रोग है हम रोगी है, महाराज डॉक्टर है। महाराज भागवत कथा से, कथा रूप मेडिस दवा से हमें इलाज करे, ये महाराज से प्रार्थना है। और एक बांग्ला गाना भक्त विनोद ठाकुर का, भूलिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर तुमा, भूल गई मैं इसका अर्थ। ये है गाना का, भक्त विनोद ठाकुर का, जे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण को आप बोलिए, मेरा दुख कृष्ण को बोलिए। कृष्ण दयामय, आपका कथा सुनने के बाद कृष्ण मेरे के ऊपर दया करेगा, यही अर्थ है। और सबसे बड़ा ब्रजभक्ति प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, कारण इस तरह आयोजन किया, हमें बहुत आनंद मिला, बहुत सुख प्राप्ति हुआ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। धन्यवाद मोक्ष माता जी। हमारे बीच में एक छोटा सा बच्ची है तुलसी, तुलसी भी दो शब्द बोलना चाहती। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
हरे कृष्णा, मेरा नाम तुलसी है।
ठीक है, महाराज जी को प्रणाम कर। यहाँ माइक में आ जाओ, माइक में बोलो। यहाँ कौन कौन है, कौन कौन किस किस को देख रहा है, यह कौन है, बीच में कौन है?
बीच में
राधा कृष्ण।
राधा कृष्णा।
और उस तरफ
कौन? निताई जी।
और इस तरफ जगन्नाथ जी। जगन्नाथ हरे कृष्ण। थैंक यू। इस तरफ हरे कृष्ण। अभी मैं अंतिम में एकेश्वर प्रभु को बुलाता हूँ। एकेश्वर प्रभु आकर दो शब्द जो है कहें। एकेश्वर प्रभु हमारी मंदिर में प्रचारक का सेवा करते हैं एवं भगवान की बहुत सुंदर ड्रेसिंग भी करते हैं, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं।
स्वामिनिति नामिने वांचा कल्पतरुवेश कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सर्वप्रथम मैं राधा गोविंद महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और आपके सभी के ओर से मैं राधा गोविंद जी को प्रणाम करता हूँ। तो 2000 साल में जब मैं ब्रजमंडल परिक्रमा किया हूँ उस समय राधा गोविंद महाराज जी मधुबन में प्रवचन दे रहे थे। तो पहला प्रवचन में राधा गोविंद महाराज जी तो ज्यादा से ज्यादा संस्कृत में बोलते, तो संस्कृत मुझे तो आता है नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस्कॉन में अपना समय बिता रहा हूँ और जैसे दिन घटते जा रहा है, फिर उसके बाद पता चला है कि संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मधुबन में महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, उस प्रवचन में भागवतम का एक श्लोक लिए थे जो प्रभुपाद जी ने इस देश से विदेश जाते समय उस श्लोक को दोहराए थे। तो श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु अभद्राणि विदनोति सुरहत्सताम। इस श्लोक को महाराज जी ने दोहराए, उस बात को मैंने मन में ही रखा है, लेकिन इसका अर्थ मुझे पता नहीं था। तो सबसे जो पुण्य कर्म है वो कृष्ण कथा है। हम सोचते हैं कि भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो है ही, लेकिन सबसे गुह्य जो दान है वो भगवान का कथा सुनाना। तो सबसे जो दानवीर जो है अपना राधा गोविंद महाराज जी, वो बहुत ही दानी है। और गोपियां भी कहती है कि सबसे जो दानी है वो कृष्ण कथा जो है वही सबसे दानी है। जैसे तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, क्योंकि इस दुनिया में हर एक जीव भगवान के लिए तरस रहे, तड़प रहे हैं, तप्त जीवनम, जैसे अग्नि में जो जल रहा है उस तरह हर एक व्यक्ति का है। तो जब हम तवकतामृतम तप्त जीवनम, जब तक हम भगवान का कथा सुनेंगे नहीं तो हम इस संसार में सुखी नहीं रह सकते। इस कारण से राधा गोविंद महाराज जी ने यहाँ पे हमें कथा सुनाए। और 4 साल पहले मेरे मन में इच्छा थी, मैं शरीर छोड़ने से पहले राधा गोविंद महाराज जी का कथा सुन के ही छोड़ूंगा, तो आज वो मेरी इच्छा पूरी हुई। चाहे भगवान अभी भी ले जाए तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मैंने प्रवचन में ऐसे सुना है कि भागवत कथा जो सुनता है उनके लिए गरुड़वान आता है, लेकिन आज तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है गरुड़वान। लेकिन जैसे गोकर्ण ने कथा किए थे तो उस समय दुनुगारी का उद्धार हुआ है, तो वहां पे गरुड़ आया और उनको लेके चले गए। यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे क्यों? तो एक मन में प्रश्न उठता है, लेकिन उसका कारण यह है कि हम सुनते हैं लेकिन उसका मनन भी करना होता है। जैसे धुंधुकारी थे, वो तो बहुत ही पापी व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही पिशाचोनी में गए हुए जो जीव है वो ऊपर आना बहुत ही असंभव है, लेकिन भागवत कथा सुनने के पश्चात और सुनने के बाद जब कथा समाप्त होता है तो फिर हम हंसी मजाक में जीवन बिताते, समय बिताते। लेकिन धुंधुकारी ऐसे नहीं थे, वो उसका मनन करते थे, श्रवण, उसके बारे में चर्चा करते थे। जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, लेकिन इस दुनिया में हिरण्यकशिपु स्मरणम ज्यादा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसको बहुत ही गंभीरता से लेंगे, क्योंकि आत्मा जो है इस दुनिया में भटक रहा है, वो इसी कारण से भगवान की जो कथा है इस कारण से वो आत्मा दुखी है। जब आत्मा इस कथा में श्रवण करता है तो फिर आत्मा आनंदित हो जाता है, और इस आनंद का जो वर्धन है ये हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो राधा गोविंद महाराज जी बहुत ही दयालु है। राधा गोविंद महाराज जी जब कथा समाप्त कर रहे तो बोल रहे थे कि आपके आशीर्वाद से मैं ऐसे कथा करते रहूं। वास्तव में ये कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो परिपूर्ण महाराज जी है, फिर भी नम्रता अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए, एक संतों का एक लक्षण है, ये हमें सीखने को मिलता है। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। हरे
कृष्ण। इसके बाद आरती पूजा विराधि होगा 2 मिनट।